हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो और उसी के मुकद्दस और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आज की सुबह में हम खुदावन के कलाम में से इससे पहले के सीखें को खुदावन के वादे याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि खुदावन वादों में सच्चा है और वो वफादार है। हम बेवफा हो जाते हैं, वो हमसे कभी भी बेवफाई नहीं करता, इसीलिए उसे वफादार खुदा कहा गया है। और खुदावंद अपने कलाम में यूँ फरमाता है, जब हम जबूर नवीस उसका जबूर 37 उसकी 4 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह मेरे बेटे और बेटी जिसे हम कह सकते हैं, और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावन चाहता है कि हम उससे जुड़े रहें, खुदावन चाहता है कि हम उसमें कायम रहें, खुदावन चाहता है कि हम उसके पास आएं। सो आए हम खुदा के हुजूर झुकें और अपनी सब राहों को सब रास्तों को सब ख्वाहिशों को उस पर छोड़ दें और उस पर तवक्कुल करें, वही सब कुछ करेगा। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखें हम सबके लिए बरकत का बायस ठहरा, क्योंकि तू दिल की मुरादों को जानता है, तू हिकमत और दनाई देने वाला खुदा है। आज के पैगाम के वसीला से हमारे दिलों को रोशन कर, ताकि हम ऐसे मसीही बने जैसे तू चाहता है, ताकि हम ऐसे नुमाइंदे बने जैसे तू चाहता है। आ जाए हुई तमाम कलीसिया को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को बड़ी बरकत दे, और ये रिश्ता तेरे साथ दिखावे का या मतलब परस्ती का ना हो, बल्कि हम हर रोज हर हालात में तुझसे मोहब्बत करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से इफ़्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 2 बाप, हम उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक का हवाला पढ़ेंगे और आज 18वीं आयत में से सीखेंगे और जानेंगे कि खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा, तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। खुदावंद कहता है, तुम मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करूंगा। खुदावन फरमाता है यसाया के वसीला से, देखो कि मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और मेरा कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी के बायस तुम मुझसे दूर हो गए, तुम्हारे गुनाहों के बायस। इसलिए जब भी हम खुदा के हजूर आए पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत से उससे उसके कलाम के सच्चाइयों को सीखने के लिए तैयार हूँ। तो आज हम इफ़्सियों 2 बाब उसकी 13वीं आयत से सीखें, 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक का हवाला पढ़ेंगे। जो बहन बहन भाई कलामे खुदा पढ़ सकते हैं वो मेरे साथ निकालें। तेरहवीं आयत में यूं लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यसु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाब्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। 18वीं आयत, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। ये अजीब सच्चाई, ये खूबसूरत तोहफा, ये खुदा की अजीब मोहब्बत जिसके बारे में पालूस रसूल अपने जज्बात को, अपने एहसासात को उस मोहब्बत को, हालांकि वो कैद खाना में है, सर्दी की हालत में, हर तरह के तशद्दुद का सामना करते हुए वो इस हकीकत को लिखता है, खुदा के लोगों को सिखाते हुए, उनको बताते हुए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, कि तुम जो पहले दूर थे यीशु मसीह में अब नज़दीक हो। इसलिए आपको ये सच अपने दिल, अपनी रूह, अपनी जान में उतारने की ज़रूरत है। और वो बयान करता है कि तुम्हारी और खुदा के दरमियान जो रफाकत थी, उसमें जो गुनाह दीवार के तौर पर था, उसे यीशु मसीह ने ढा दिया। और फिर यहूदियों और यूनानियों में, ईमानदारों में और गैर ईमानदारों में जो फसाद की बड़ी दीवार थी कि हम इस खुदा की इबादत करेंगे और तुम्हारा खुदा मुख्तलिफ है, यीशु मसीह ने आकर वो रास्ता तैयार कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो खुदा का बेटा और बेटी बन जाए। और उन सबको खुदा यीशु मसीह क्या कहता है, मेरा बदन यानी कि कलीसिया, मसीह का बदन, मसीह का चुना हुआ बदन, जिसे कलीसिया कहा गया है, जिसे खुदा का घराना कहा गया है, खुदा के लोग कहा गया है, ईमानदारों का मजमा कहा गया है, और तमाम दुश्मनी को दूर करके एक बना दिया, एक तन कर दिया, खुदा से मिला दिया। और ये सब कुछ कोई और नहीं कर सका, कोई ऐसा काबिल ही नहीं था। इसलिए आज 18वीं आयत पर आपकी गौर दिलाना चाहता हूँ, जो बातें हमने सीखी। पालूस रसूल यहाँ पर रूहानी बाप के तौर पर इफसस की कलीसिया के ईमानदारों को लिखते हुए कहता है, और आज मैं मसीह में इस जिम्मेदारी को जानते हुए कि खुदा ने मुझे रूहानी तौर पर आपका पेशवा, आपका रूहानी तौर पर निगाहबान, पादरी और सिखाने वाला ठहराया, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत में कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। आप तब्दील हो सकते हैं, वो कभी तब्दील नहीं होता। खुदा आपसे वफादार है और उसकी वफादारी का सबूत यीशु मसीह में है। इसलिए हम बेवफा हो जाएंगे, वो हमसे बेवफाई नहीं करेगा। खुदा बहुत ही उम्दा उम्दा खुदा है, जो जिंदा है, जो दुआओं का जवाब देता है। और बथेरे इस दुनिया पर खुदा है, बथेरे माबूद हैं, बथेरे लोग हैं जो माबूदों की और पत्थर की और लकड़ी की और सीमेंट की बनाई हुई मूर्तों की इबादत करते हैं, लेकिन वो बेकार है। लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और कलामे मुकद्दस में लिखा है, जबूर की किताब में, मबारिक हैं वो कौमें जिनका खुदावंद खुदा है। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि खुदावंद का बंदा यर्मिया कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे, वो खुदा के बारे में कहता है कि खुदावंद कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती की इंजील 7:7 में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस कहता है 18वीं आयत में कि खुदावंद यीशु मसीह के निजात के काम के वसीला से, सलीब पर फतह हासिल करने के वसीला से, बेशक सलीब पर शैतान के जहन में था कि उसने यीशु मसीह को हरा दिया, उसे मौत के हाथ दे दिया, लेकिन वो उस हक से और सच से वाकिफ नहीं था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। याद रखें, इस जमीन पर कोई ऐसा नबी नहीं हुआ, कोई ऐसा खुदा नहीं हुआ, और कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जिसने दावा किया हो कि मैं जिंदा होऊंगा, सवाई यीशु मसीह के, जो जिस्म में खुदा था, जो खुदा का बेटा था, जिसने कहा कि अगर तुम मुझे कब्र में भी उतार दोगे, मैं फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये बड़ी फख्र की बात है और हमारे मसीही ईमान की बुनियाद है। उसी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, जो खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा आसमान पर, आपको ये बड़ा इख्तियार हासिल हुआ। सो 18वीं आयत में पालूस कहता है, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। जब हम इसे गौर से देखते हैं तो उसी का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? यीशु मसीह के लिए। हम दोनों से मुराद यानी यहूदियों और गैर यहूदियों, जिसमें से हम सब यहूदी नहीं, हमें यहूदी, हमारे बाप दादा यहूदी नहीं थे। हम गैर कौम थे, बुत प्रस्त थे, जादूगर थे, कब्रों को मानने वाले, देवी देवताओं को पूजने वाले, क्योंकि हम सब इससे पहले के पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान बनता, ये इंडिया का हिस्सा था, जब लोग बुत प्रस्ती जादूगरी में मुबतला थे, तो तोमा रसूल ने आकर खिदमत की। तोमा रसूल ने आकर यीशु मसीह के कलाम और उसकी खुशखबरी के बारे में बात की। तोमा, ये वही तोमा है जिसने खुदावंद यीशु मसीह पर शक किया और कहा कि मैं ता चाहता हूँ कि तेरे हाथ और तेरी पसली को देखूं, उनमें अपने हाथ डालना चाहता हूँ। अगर आज बहुत दफा हम तोमा को शकी कहते हैं, लेकिन इस शक में से हम सीख सकते हैं। अगर आज आप किसी तरह के शक, किसी तरह के फरेब, तरह तरह की जगह पर इत्मीनान, तसल्ली, औलाद के लिए, कारोबार के लिए और दूसरी मुरादों को पाने के लिए जाते हैं तो बेकार हैं। वो तमाम जगहें, वो तमाम कब्रिस्तान, वो तमाम मंदिर, वो तमाम मूर्तों के आगे झुकना, वो तमाम लोगों पर भरोसा करना जिसके बारे में यर्मिया नबी कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, मुबारक है वो औरत जो खुदावंद पर यकीन करती है, लेकिन लानत है उस औरत पर, उस मर्द पर और उन सब पर जो खुदावंद की बजाय किसी इंसान पर भरोसा करते हैं। इसलिए तोहमा रसूल ने शक तो किया, लेकिन उसके शक में से हम क्या सीखते हैं? उसने कहा कि अगर तू खुदावंद खुदा वाकया ही जिंदा है तो मुझे अपने आप पर जाहर कर, मेरे ऊपर जाहर कर, मुझे बता कि वाकया ही तू सच है। और यीशु मसीह हकीकत है, वो जिंदा है, मुर्दा नहीं। और यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया? अपने आप को उस पर जाहर कर दिया। तो आज मेरा सवाल ये है, आज आपके लिए ये खबरदार करने की बात ये है, अगर आज आप किसी तरह के दुख, मुसीबत, परेशानी, कारोबार की वजह या किसी और वजह से तरह तरह की जगहों पर फिर रहे हैं और खुदावन खुदा पर शक कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपकी नाउम्मीदी में उम्मीद दे सकता है। यीशु मसीह ही है जो आपको हौसला दे सकता है। कोई कब्र, कोई मूरत, कोई तस्वीर, कोई बाबा, कोई पीर, कोई फकीर आपको इत्मीनान और तसल्ली नहीं दे सकता। बेशक आप ये सोचते हैं, बहुत दफा ये झूठ बोला जाता है कि सब खुदा ने बनाए हैं, खुदा के सिवा किसी और की इबादत करना हमें लाजम नहीं है, हमें रवा नहीं है। जैसे हमें यीशु मसीह की तरफ से हुक्म मिला है कि तुम एक ही बीवी के शोहर हो, वैसे यीशु मसीह चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मेरी इबादत करें, ना कि गैर मबूदों की, ना कि चांद और सितारों की, ना कि बनाए हुए हाथ के पत्थर के नमूनों की। इसलिए पालूस रसूल इस बात को लिखते हुए कहता है, क्योंकि उसी के वसीला से, जैसे तोमा के वसीला से इंडिया में और पाकिस्तान के दूसरे और इंडिया के बहुत से कूचों में यीशु मसीह की मनादी हुई, पालूस रसूल यहाँ पर कहता है उसी के वसीला से यीशु मसीह हम दोनों की यानी कि गैर कौमों की और यहूदियों की क्या हुई? एक ही रूह में रूहुल कुद्दस के वसीला से बाप तक यानी कि इब्राहिम, इजहाक, याकूब के खुदा के वसीला से, इब्राहिम, यकूब और इजहाक के खुदा तक हमारी पहुंच है, रसाई है, जिसका मतलब हम उसके पास जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। आज जब कभी भी आप दुआ के लिए झुकते हैं, चाहे वो आपका घर का मकान हो, चाहे वो आपका घर का सहन हो, चाहे वो गली हो, बाजार हो, अंधेरी रात हो, चाहे आप छत के ऊपर हो और चाहे आप बवर्ची खाना में और गुसल खाना में हो, आपका खुदा आपकी आवाज सुन सकता है, क्योंकि वो बहरा नहीं, वो जिंदा है। वो जिंदा है। क्यों? मेरे साथ एक हवाला निकालें, जबूर 115। वहां पर खुदा का कलाम हमें वाजिया तौर पर ये बात कह देता है, लिखा है, हमको नहीं ऐ खुदावंद, हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातर जलाल बख्श। कौमें क्यों कहें कि अब उनका खुदा कहाँ है? कौमें क्यों कहें, जब आप दूसरी कौमों के पास जाकर कहेंगे कि हमें अमीर दो, हमें हौसला दो, हम बीमारी के लिए शफा, हम नाउम्मीदी के लिए उम्मीद, हम बीमारी के लिए, हम दूसरे कामों के लिए आए हैं, तो वो कहेंगे कि ये कैसे खुदा की इबादत करते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि कौमें क्यों कहें, अब उनका खुदा कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी, आदमी के बनाए हुए हाथों की, क्या कहते हैं, के कारागरी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, 5वीं आयत। आंखें हैं पर वो देखते नहीं, 6ठी आयत। उनके कान हैं वो सुनते नहीं, ये वो बुत हैं जो इंसान ने बनाए हुए हैं। नाक हैं पर वो सूंघते नहीं, हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पांव हैं पर वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। लेकिन हमारी कुम्मक, हमारी उम्मीद, हमारी कुवत, हमारी ताकत, हमारा जिंदा खुदा कौन है? लिखा है, ऐ इसराइल, खुदावन पर तवक्कल कर। इसराइलियों ने बुतों की तरफ मतवजा होना शुरू कर दिया। अगर आज आप बुतों की तरफ मतवजा है, तो यहां पर अपना नाम लिख सकते हैं। आप यहां पर आज अपने शहर को कह सकते हैं, आरफ, ए आरफ के रहने वालों, खुदावन पर तवक्कल करो। ए न्यू क्रिश्चियन कलोनी के रहने वालों, खुदावन पर तवक्कल करो। ए पुरानी क्रिश्चियन कलोनी के रहने वालों, खुदावन पर तवक्कल करो। ए फैसल के घराने, खुदावन पर तवक्कल करो। ताहर के घराने, खुदावन पर तवक्कल करो। राजू के घराने, खुदावन पर तवक्कल करो। हर एक भाई लतीफ के घराने, खुदावन पर तवक्कल करो। भाई सिद्दीक के घराने, खुदावन पर तवक्कल करो। भाई अफजल के घराने, खुदावन पर तवक्कल करो। भाई जफर के घराने, खुदावन पर तवक्कल करो। खुदावन पर यकीन करो। और क्या लिखा है, वो ही उनकी कुम्मक और उनकी सिपर है। इसलिए वो ही खुदावंद खुदा यीशु मसीह। आज इस आयत में से हम सब कुछ, बहुत कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ यही सीखेंगे, सीखा है कि खुदावंद हमारा खुदा, जिसने सब कुछ मुमकिन किया, उसके पास जाने के लिए हमें रसाई हासिल है। उससे हम बातचीत कर सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं, जैसे रोमियो के 8 बाप में कहता है कि हम उसे कह सकते हैं, अब्बा फादर, अब्बा हमारी आवाज को सुन। आपका खुदा के साथ रिश्ता यीशु मसीह पर ईमान लाने के साथ बहुत ही गहरा है, लेकिन सवाल ये है, क्या आज हम इस तरह अपने आसमानी बाप को बुलाते हैं, बाप मेरी मदद कर, मैं मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं, या फिर हम अपनी ही समझ के मुताबिक चलते हैं? सो खुदावन का बंदा पालूस कहता है, हम इसमें से बाद में सीखेंगे और ज्यादा कुछ, इफिसियों 2:18, और उसने तुम्हें भी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है, अहम खुदा के हुजूर झुके हैं। यीशु मसीह के वसीला से हम सबको खुदा पाक रूह की कुदरत से खुदा बाप के तख्त के सामने जाने की कुदरत हासिल है। इसके बारे में अपने बच्चों को बताने की जरूरत है, इसके बारे में अपने घर में बात करने की जरूरत है, बजाय के चुगलियां बजाय के लड़ाई झगड़ा, बजाय के कोई और बातें करना, बजाय के फसाद फैलाना, हमें यीशु मसीह के बारे में बात करने की जरूरत है, जो बहुत ही जरूरी है। आए हम दुआ करें। और मेरी दुआ है कि आज का पैगाम आपकी जिंदगी में बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।